अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का महापुरुषों के तप तेज से निर्मित और पुष्पित पल्लवित जो ये भवन है नित्य प्रति जिसमें हम प्रातःकालीन अमृत वेला के शुभ काल में शांत वातावरण में उन महापुरुषों के पुरुषार्थ के कार्य रूप इस सुंदर भवन में बैठकर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण लक्ष्य की पहचान लक्ष्य को पाने के तरीके का विचार चिंतन करते हैं। बारंबार धन्यवाद महापुरुषों का भगवान का कि किस प्रकार से भगवान की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर हो रही है। वर्तमान में हमारा विषय श्रीमद् भगवद गीता के षोडश अध्याय में का हम लोग चिंतन कर रहे हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में दैवी संपदा और आसुरी संपदा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी बाजार में जाकर किसी सामान को खरीदने के लिए संपदा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी संपदा की आवश्यकता है। और उसके जो 27 गुण हैं दैवी संपदा और उसके बाद जो सहर्ष हमको मूलतः प्राप्त ही है जिसको आसुरी संपदा कहा जाता है, तो प्रथम भगवान ने अर्जुन को दैवी संपदा के जो गुण गिनाए हैं। हमारा जो चिंतन चल रहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य तपार्जवम, यज्ञ के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ हमारे दैवी संपदा का एक गुण माना गया है और बड़े विस्तार से भगवान ने जो है यज्ञ को दो अध्यायों में समझाया। कल हम लोगों ने तृतीय अध्याय के माध्यम से यज्ञ की चर्चा की थी और आज हम लोग चतुर्थ अध्याय के माध्यम से, भगवान ने यद्यपि जो है चतुर्थ अध्याय में प्रथम गुण क्या कहते हैं कर्म विकर्म और अकर्म की व्याख्या की है, लेकिन जो है बाद में जो अंतिम भाग है इसका लगभग चौथे अध्याय का, उसमें यज्ञ में जीवन की व्याख्या की है, पूर्ण रूपेण समझाने की चेष्टा की है। क्योंकि जैसा कि आपको कल भी बताया था, ये जो कुछ भी हमको संसार में दिखाई दे रहा है, जैसा जैसा जिसने यज्ञ किया, यज्ञ को फलदायी फल देने वाला माना जाता है, तो जैसा जैसा भी संसार में जो जिस प्रकार का यज्ञ करता है उसको उसी प्रकार के प्राप्तव्य की यानी फल की प्राप्ति होती है। तो संपूर्णता में चाहे भौतिक जीवन हो तो भी यज्ञ रूप है और चाहे आध्यात्मिक जीवन हो तो यज्ञ रूप होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहां वेदों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है, यानी यज्ञ ही जीवन है। विष्णु पालन करता है, हमारे धारण करता है, जिसको हम लोग धारण सृजन संहार तीन शक्तियां मानते हैं। सृजन ब्रह्मा जी का कार्य, धारण विष्णु जी का कार्य और संहार जो है महेश्वर का कार्य है। तो जो धारण है यानी जीवन है वो यज्ञ है। यज्ञ से रहित कुछ भी यहां पर नहीं है, जो कुछ भी है सब यज्ञ का परिणाम है, चाहे वो दूषित यज्ञ हो और चाहे वो सात्विक यज्ञ हो। तो जैसा जैसा जिसका यज्ञ है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं तो चौथे अध्याय में पुनः भगवान ने जो है जिस प्रकार से तीसरे अध्याय में प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने जो है ज्ञान से ही इस यज्ञ की धारणा को समझाया है। क्योंकि यज्ञ गुण है, दैवी संपदा का एक गुण है यज्ञ। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान ने जो यज्ञ की व्याख्या प्रारंभ की है और यज्ञ के स्वरूप का जो विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया चतुर्थ अध्याय में, समझने योग्य चीज है। क्योंकि रात दिन आपका जो हवन कुंड चल रहा है ना, आप देखिए रात दिन जो आप अपने शरीर को जी रहे हैं वास्तविकता में क्या है? अरे रात दिन 24 घंटे आप श्वास प्रश्वास के द्वारा हवन कुंड आपका जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर ये श्वास प्रश्वास रूपी हवन कुंड बंद हो जाए, ये यज्ञ बंद हो जाए, तो आपका जीवन वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए सब जगह यज्ञ ही चल रहा है। भगवान सूर्य नारायण उदय होते ही जल को ऊपर अपनी ओर क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। देखिए यज्ञ प्रारंभ हो जाता। तो ये जो यज्ञ रूप जीवन है, जब इसी को हम आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, तो वहां पर जो यज्ञ का स्वरूप भगवान ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से अपने इस भयंकर कर्ममय संसार, साधारण कर्ममय संसार नहीं है, ये भयंकर कर्ममय संसार है, क्योंकि यहां पर छोटे से छोटे कर्म के फल को भी आपको क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अरे भाई, एक आप जो है जाकर पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हो जाओ और दरोगा बैठाओ खाली, उसको आप एक गाली दे दो, काम हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई, एक आहुति आपने डाली, उसके बाद आपको उसका तुरंत क्या करना पड़ेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो देखो, हर छोटे से छोटे कर्म का क्या है, फल है। सुबह सुबह आप किसी, है ना, बहुत पहले महाराज राज कपूर ने फिल्म बनाई थी, उसमें कौन सी थी फिल्म, उसमें एक दृश्य दिखाया था उसने कि उस जमाने में, बताओ किस जमाने की बंबई, जब गिनी चुनी आबादी थी महाराज, है भिखारी के पास जाकर वो बेचारा बाहर से आया हुआ यात्री जो है पूछता है, भाई पता बता दो। भिखारी कहता समय नहीं, अभी जाओ आगे जाओ। भिखारी के पास भी, हाँ देखो ये कर्म का फल है। हाँ जो भी था, लेकिन हमारा तो उदाहरण से मतलब है कि आदमी का जो जीवन है, देखो कर्म का जो स्वरूप है, एक भिखारी भी मौका आने पर डांटने पे वो भी चूकता नहीं है, यानी कर्म का फल आपको भिखारी के सामने भी भुगतना पड़ेगा, है ना? तो ये ऐसा भयंकर कर्ममय संसार है, छोटा मोटा नहीं है। यहां पर हर कर्म का फल, अरे भाई एक फूड प्वाइजनिंग जिसको आप मेडिकल भाषा में कहते हैं, केवल किसका परिणाम है, एक अन्न का कोई प्रदूषित दाना जो आपके अंदर गया और उसने जाके आपके पूरे शरीर में हाहाकार मचा दिया और आपको लेकर राधी रात को भागना पड़ा कहां, हॉस्पिटल में। ये है कर्म की दुनिया महाराज। एक जरा सा साधारण सा कर्म हमारे पूरे जीवन को हिला देता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, भगवान ने इस चीज को समझाया है बारंबार, क्योंकि यज्ञायाः चरता कर्म, है ना, ये जिसको भगवान जो भी क्या था तीसरे अध्याय का श्लोक, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। तो जो यज्ञ के लिए किए गए कर्म है, आहुति रूप किए गए कर्म है, वो हमको हमारे मार्ग में, यानी अध्यात्म के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाते, बल्कि जिस प्रकार से यज्ञ में डाली हुई आहुति भस्मीभूत हो जाती है, इसी प्रकार से निष्काम कर्मी के संपूर्ण कर्म पुण्य पाप सहित उन फलों के सहित भस्मीभूत हो जाते हैं, परिणाम तया उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी आपको ना अपने पास पुण्य रखने हैं और ना पाप रखने, यदि आप ब्रह्म ज्ञान के पथिक हैं, यदि आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके पहले नियम बताया कि ये यज्ञ रूप जीवन प्रारंभ कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। आपको बताया था दैवी संपदा का एक गुण क्या था, ज्ञान योग व्यवस्थिति। गत संगस्य का मतलब जो निराशक्त हो गया है, यानी जिसने संपूर्ण अपनी आसक्तियों को समाप्त कर दिया है। मुक्तस्य यानी जीते जी उसने अपने देहाभिमान का परित्याग कर दिया, उसको मुक्त स्वरूप कहते हैं, है ना। इस पिंजड़ा, ये जो काया है ना पिंजड़ा, जिसमें हम आप बंद हैं और अपनी दुनिया को, उसी दुनिया को, यानी शरीर के पिंजड़े की दुनिया को ही अपनी दुनिया मानते हैं। जो महाराज क्या होता है, जो बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, जीवन के रहते ही इस पिंजड़े की आसक्ति का परित्याग कर देता, उसको मुक्त स्वरूप कहा जाता है। तो ये मुक्ति की अवस्था, यानी देहाभिमान से जो रहित हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसा यानी जिसका अंतःकरण पूर्णतया निरंतर ज्ञान स्वरूप में स्थित है, है ना। ज्ञानावस्थित का मतलब, ज्ञानावस्थित का मतलब क्या हुआ है? अरे ज्ञान क्या है? अरे ज्ञान नाम परमेश्वर का है। किसका नाम है? परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो। देखो बड़े विचित्र शब्द हैं, केवल आत्मा में एक शब्द जोड़ दिया गया, परम क्या बन गया, परमात्मा। परम शब्द का मतलब क्या है? परम शब्द का मतलब उसके बाद, जिसके बाद फिर कुछ भी, अंतिम सीमा जिसको माना जाता है। तो आत्मा और आत्मा के बाद परमात्मा, उसी को आप जो है दूसरी भाषा में परब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म है ना, परम, उसके बाद पर, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो चाहे उसको आप परमात्मा कहो, चाहे आप उसको परमेश्वर कहो, चाहे आप उसको परब्रह्म कहो, कहानी सारी एक ही है। यानी जो नित्य निरंतर अपने वास्तविकता में परमेश्वर में स्थित है, या परमात्मा में स्थित है, या परब्रह्म में, जो भी आपको शब्द अच्छा लगे, सबका अपना अपना भाव है, लेकिन कहानी सारी एक ही है। एक की ही है ना कहानी, है ना, कि दो तो है नहीं, या परमेश्वर ईश्वर या जो है भगवान या परम ब्रह्म अलग अलग हो। जब बात ही ईशावास्यमिदं सर्वम की है कि जो कुछ भी है सब ईश्वर ही है, उस ईश्वर के अलावा यहां कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो ऐसा जो भाव रखने वाला ज्ञानावस्थित है, उसके लिए जो है क्या होता, उसका जो जीवन है वो यज्ञाया चरता, उसका जीवन कैसा होता, वो यज्ञमय जीवन का आचरण करता है ना। तो इस प्रकार से समग्रम कर्म प्रविलीयते, है ना, क्योंकि यहां पर कर्मों को समाप्त करने की बात है, कर्मों को नहीं बल्कि कर्मों के फलों को। मुख्य जो समस्या है वो है कर्मों का फल। जिस भी कर्म का फल हमको प्राप्त हो जाता है, फिर उस कर्म के फल को हम छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जिस चीज के ऊपर आपके देहाभिमान की मोहर लग गई, मेरा की मोहर लग गई, फिर आप कदाचित भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है और यही सबसे बड़ी बाधा है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर के बिल्कुल निकट पहुंचकर फिर वहां से वापस आ जाते हैं। जैसे कोई बहुत चिकना स्लोप हो, है ढाल हो पहाड़ी की तरीके का, और बार बार कोई उसमें चढ़ने का प्रयत्न करे, बहुत जोर लगा के ऊपर तक जाता है और फिर फिसल कर नीचे आ जाता है, तो वही स्थिति हम लोगों की होती है। किसके कारण होती है? क्योंकि हमारे अंदर देहाभिमान है, और उस देहाभिमान के संग हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के फलों को तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि वो कर्म फल हमारे मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। लेकिन जिस क्षण कोई योगी, कोई जो है आत्मज्ञानी महापुरुष अपने इस यज्ञ रूप जीवन में, जहां पर वो अपने संपूर्ण पुण्य पाप सब की जो है आहुति दे देता है, यानी भस्मीभूत कर देता है। यज्ञ में जीवन का मतलब समझिए, जिस प्रकार से हवन कुंड में गई हुई संपूर्ण सामग्री, क्या क्या होता है उसमें, पंचमेवा होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, देसी घी होता है, शुद्ध ग्रत जिसको कहते हैं वो होता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन अग्नि सबका भक्षण करके उसको भस्मीभूत कर देती है, सब भस्मी में परिणित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से महापुरुष आत्मज्ञान का पथिक भी अपने जीवन में आए हुए संपूर्ण कर्मों के फलों को भस्मीभूत कर देता है, यानी उनके फल की फिर वो चाहना नहीं करता कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। और इसके लिए हमारे यहां हमारा सबसे बड़ा उदाहरण राजा पृथु का दिया जाता है। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और एक एक अश्वमेध यज्ञ जो है अरबों खरबों रुपए जो है खर्च करके, उनको जो है दुनिया भर के लोगों को बुलाकर सम्मान करके, ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सम्मान करके, तब जाकर वो यज्ञ पूर्ण होता है। तो ऐसे 100 यज्ञों के फल को एक क्षण में भगवान के कहने पर राजा पृथु ने छोड़ दिया। ऐसे जरा सोचिए, हमसे आपसे एक छोटा सा फल भी, अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपकी इनाम में मर्सिडीज कार निकल आए, क्या करोगे, क्या करोगे, लेने जाओगे या मना कर दोगे, हैं? क्यों भाई, क्या कहता आपका अंतःकरण, कोई मना करेगा, हैं? ये है कर्म फल का त्याग, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जरा विचार कीजिए, राजा प्रथु ने हम एक साधारण से इनाम को त्यागने को तैयार नहीं होंगे, और राजा प्रथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों के फल को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से नचिकेता ने उसी प्रकार के फलों का जो भरा हुआ भंडार यमराज ने भेजा नचिकेता के समक्ष कि जो जो मांगना है इसमें से मांग लो, तुम्हारा नचिकेता ने उन संपूर्ण फलों का परित्याग कर दिया। जब हम इस प्रकार से संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देते हैं, पुण्य पाप दोनों को, तब हमको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब उसके लिए यहां पर यज्ञ का पूर्ण स्वरूप, जो हमारा यज्ञ है, जो वेदांत का यज्ञ है, जो आत्मज्ञानी का यज्ञ है, वो बताया भगवान ने। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ये अद्वैत सिद्धि कहलाती। यहां पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी बचा, ये स्वरूप है कर्म से मुक्त हुए आत्मज्ञानी का। कहते हैं अर्पणम, यानी श्रुत्वा अधिक जो भी अर्पण किया जाता है वो क्या है, ब्रह्म है ना। हवी यानी जो हवन किया जाने वाला योग्य जो द्रव्य जितने भी वहां पर उपस्थित हैं, वो भी उसके लिए सब ब्रह्म है। और ब्रह्मणा जो करने वाला है वो भी अपने आप को ब्रह्म रूप ही देखता है। इसी प्रकार से जो सामने हवन कुंड में जलने वाली अग्नि है ब्रह्माग्नौ, तो अग्नि भी क्या है, ब्रह्म है। करने वाला भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, उसमें जाली जाने वाली सामग्री सत्वादिक हवि आदि सब ब्रह्म है, और जो उसमें आहुति दी जा रही है हुतम जो क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म से अलग कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जब वो यज्ञ का कर्ता ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा जो परब्रह्म की निरंतर एक अवस्था में स्थित है, उसके द्वारा जो भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चलता फिरता उठता बैठता समाधिस्थ माना जाता है। समाधि का मतलब सम रूप से जो अपने आप में अधिष्ठित है, जिसके अंदर किसी प्रकार का मल विक्षेप नहीं बचा, उसको समाधिस्थ कहते हैं। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, समाधि में स्थित चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते किसी भी रूप में वो अपनी अवस्था से बिल्कुल भी अलग नहीं होता। तो ऐसे जो ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा किया गया जो ये यज्ञ है, उसका प्राप्तव्य भी क्या है, गंतव्यम ब्रह्म, उसका फल भी ब्रह्म ही है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जिसको हम लोग ज्ञान का चरम कहते हैं। यानी ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में डाली गई ब्रह्म रूप आहुतियों का प्राप्तव्य भी ब्रह्म है, उसके अलावा वहां से कुछ दूसरा प्राप्त नहीं होता। इसी को ज्ञान का चरम कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया महाराज आत्मज्ञानी की स्थिति, जिसको हम लोग ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, यानी जिसने अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद भगवान ने जो हमारे यज्ञ रूप दर्शाए हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, जैसे संसार में वेदों में यदि आप जाएं तो वहां पर जो है अनेक अनेक देवता हैं, और अनेक अनेक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों की रचना की जाती। भौतिक रूप से जब हम समृद्ध होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहां यज्ञ का विधान है। तो भगवान ने यहां पर चतुर्थ अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि जिस स्थिति का वर्णन अभी आपने श्रवण किया है वो एकाएक सबके बस का नहीं है कि आप जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उत्तम हो जाओ, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको जो है आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा, और आसक्ति से मुक्त होने के संग संग ज्ञानावस्थित होना पड़ेगा, यानी निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने कर्मों के बंधन को तोड़ पाएंगे। अन्यथा ये कर्म के बंधन क्या करते हैं, इतना भयंकर चक्र स्थापित कर देते हैं, जिस प्रकार से अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता है मगर बाहर निकलना नहीं जानता। इसी प्रकार से हम इस कर्म में संसार में तरह तरह के कर्मों में प्रवेश करना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। यही हमारी आसक्ति का क्या है, साक्षात प्रमाण है। हम अंदर तो चले जाएंगे, जहां तक आप ले जाओ कर्मों में घुसते चले जाएंगे महाराज। आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए आप बिल्कुल भी मना करने वाले नहीं है, लेकिन वापस निकलना हमारे बस का रोग नहीं। क्यों नहीं? केवल छोटी सी आसक्ति ने हमको इस प्रकार से घेर रखा है। तो भगवान कहते हैं जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए क्या है, तो भगवान ने यहां उदाहरण दिए। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि दूसरा स्वरूप समझो इस यज्ञ का। कहते हैं बहुत सारे योगी लोग हैं, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान दें, यही भगवान की विशेषता, यही श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता है। भगवान ने सबको योगी माना है। क्या माना है? हाँ, किसको योगी माना है? दैवम यज्ञम, दैव यज्ञ करने वाले। दैव यज्ञ समझते हैं? हैं? दैव यज्ञ समझते हैं कि नहीं? क्यों भाई? है जी? देखा? देखो, अब साधारण से शब्द को थोड़ा सा परिभाषित शब्द में बदल दिया गया, उसी में हम घबरा जाते हैं। साधारण भाषा में इसको कहते हैं पूजा। क्या बोलते हो? जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ये क्या कहलाता है? देव यज्ञ कहलाता है। ध्यान देना, जो बड़ी गंभीरता से समझने वाली चीजें हैं हमारा। श्रीमद् भगवद गीता का एक भी शब्द फालतू नहीं, व्यर्थ नहीं भगवान ने इस्तेमाल किया। जो भी किया है बहुत समझने योग्य है, और जरा सी आप गलती करेंगे तो फिसल जाएंगे, कुछ का कुछ ही मान बैठेंगे। तो हमने देखा कि बहुत से लोगों के अंदर पूजा पाठ करने का बड़ा भाव होता है, और इसीलिए हमारे यहां आपने देखा ना, भगवान को शयन पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, काष्ठ की मूर्तियां हैं, लेकिन जो उनको प्रेम करने वाले हैं वो महाराज पंखा लगा के रखते हैं, हैं? उनके लिए बिस्तर सजा के रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई लेटता नहीं, खाता नहीं, लेकिन वास्तविक सत्य ये था, आपको तब लगेगा जब हमारे अंदर ब्रह्म भाव नहीं होगा, है ना। जब हमारे अंदर ब्रह्म भाव होगा तो हमारे लिए तो परमेश्वर कहां कहां पर है, है ना। हमने तो आपको हजारों बार उदाहरण दिया कि केवल मति भ्रम है हमारा, ये हमारे सामने माइक है, ये लोखंड का बना हुआ है कि नहीं है। अगर इस माइक को मैं आपको दे दूं और कहूं कि महाराज अपने मंदिर में रखकर इसका जो है पूजन करो, तमेव माता चविता तमेव तमेव बंधु च, करोगे? क्यों भाई, करोगे हैं? नहीं करोगे। अच्छा, अब इसी को पिघलाकर आग में भट्टी में डालकर पिघला दूं और गणेश जी के सांचे में डाल के आपको गणेश की मूर्ति, इसी माइक की मूर्ति बना के आपको दे दूं, अब क्या करने लगे आप? क्यों भाई, पूजा करने लगे कि नहीं करने लगे? ये ब्रह्म ज्ञान है हमारा। जब आपको अणु परमाणु में स्वामी राम तीर्थ अपने पेन से, अपने कलम से बात करते थे, अपने चश्मे से बात करते थे महाराज, आपकी हिम्मत है ना, तो आप भी करके देखो। भगवान राम, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, लताओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी धर्मपत्नी को देखा है। कैसा लगता सुनने में, है ना, लगता ना कि पागल है सामने वाला, कैसा है? ये पागल नहीं, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। हमको दर्शन हो नहीं रहा और उसको हो रहा है, उसको अणु परमाणु में हम खाली कहते हैं, हमने रट लिया है कि हाँ भाई ब्रह्म होता, सब जगह ब्रह्म होता, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा। इसका परिणाम है कि हम संसार के संसार में ही बंद रह जाते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो महाराज उसी प्रकार से उसका आनंद लेते हैं। सब चीजों से बात कर सकते हैं, क्या जो है पेड़ पौधे, क्या ये जड़ पदार्थ जिनको आप जड़ कहते हैं, उनके लिए वो चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य सत्ता से रहित कुछ भी। इसीलिए हमारे यहां तीर्थों में जाकर उन नदियों से आशीर्वाद मांगा जाता है महाराज, है नदियों से आप क्या मांगते हो जाके, है गोदावरी नदी में स्नान करके गोदावरी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं, जड़ है। अगर साधारण व्यक्ति विदेशी व्यक्ति से कहो कि हम नदी से आशीर्वाद मांग रहे हैं तो वो आपको क्या कहेगा, है? लेकिन जब उनको भी ये चीज समझ में आई ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक से पूछो जाके उसके लिए फिर कुछ जड़ नहीं है, उसको फिर हर जगह दिखाई देता कि नहीं। चैतन्य सत्ता का हर जगह हमारा दर्शन होता है। तो हमारे यहां ऋषियों ने देखो जब उस परम चैतन्य सत्ता का जल में जड़ में हर जगह दर्शन किया महाराज, तब उन्होंने तुलसी के वृक्ष से आशीर्वाद मांगा। देखो ब्रह्म ज्ञान क्या है, तुलसी के वृक्ष से आशीर्वाद मांगना ये ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं है? अरे भाई एक साधारण भाषा में तो वो वृक्ष है, एक प्लांट है, आप उससे आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? आप पीपल के वृक्ष से आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं? आप जल नदियों से आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं? तो ये जो पाषाण की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां हमारे मंदिर में लगा दी गई, तो हमने जब उनकी उपासना की महाराज, और कैसा जानकर, चैतन्य जानकर, परम चैतन्य जानकर, तो इसको हमारे यहां नाम दिया गया देव यज्ञ। देव यज्ञ कहलाता है महाराज जी, है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही कोई स्वीकार कर लेता है, साधारण नहीं है। पूजा का नाटक करना एक अलग चीज है, लेकिन पूजा में पूर्णतया परमेश्वर का अनुभव करना एक अलग चीज है। हमारे कनु भाई आते थे, अब तो पूना चले गए, वो बता रहे थे, वो भी जाते थे रोज बाबुलनाथ मंदिर में, तो वहां एक व्यक्ति आता था, तो वो सबसे पहले बाबुलनाथ जी के दर्शन करता था और उसके बाद नीचे आके माता भगवती पार्वती के दर्शन करता था, नित्य का उसका नियम था। और एक दिन जो है उसने सबसे कहना प्रारंभ किया, कल मेरी जो है शव यात्रा निकलेगी, सब लोग आना उसमें। लोगों ने समझा ये पागल हो गया। तो उस दिन उसने पहले माता भगवती पार्वती के दर्शन किए नीचे, और उसके बाद ऊपर गया बाबुलनाथ जी के मंदिर में, भगवान को जल चढ़ा के जैसे ही जो है उसने नमस्कार किया, वैसे ही उसका शरीर वहीं पर, आपके सामने की बात बता रहा हूं, बाबुलनाथ मंदिर। देखो देव यज्ञ को पूर्ण निष्ठा से करने के कारण उसको अपनी मृत्यु के बारे में सबको इनवाइट कर रहा है, कल मेरी जो है शव यात्रा निकलेगी, सब लोग आना, जो जो मिलता सबसे बोलता था। ये देव यज्ञ का फल है महाराज। हम लोग तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी यहां पर बैठे हुए हैं, बताओ जरा है किसी को आइडिया कुछ अपने बारे में, है कुछ अंदाजा? अच्छा नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी यज्ञ रूपता से अगर आपका अंतःकरण शुद्ध होता हो, अंतःकरण आत्मा के संग एकीकार हो जाएगा, आपको वास्तविक सत्य के दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको अपनी मृत्यु के बारे में पता चल जाए तो आपके जीवन में हाहाकार मच जाएगा महाराज कि क्या होगा। और उसकी शांति की अवस्था देखिए कि उसका मन कितना शांत है। हम लोग तो माया नगरी कहते हैं, नहीं माया नगरी, माया नगरी, इसी माया नगरी में, इसी भीड़ के बीच में महाराज उसने अपने शरीर को बाबुलनाथ मंदिर में समर्पित कर दिया भगवान को, जिसकी उपासना करता था। देखो तो अपरे योगिना दैवम यज्ञम, कहते हैं बहुत सारे योगी जन देव यज्ञ का ही आसरा लेते हैं, इसका ही सहारा लेते हैं, और इसके द्वारा अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं इसका अनुष्ठान करके। उसके बाद जो है बहुत सारे योगी लोग ब्रह्माग्नौ, कहते हैं ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने, कहते हैं यज्ञेन एवं यज्ञम, कहते हैं वास्तविकता में यज्ञ स्वरूप होकर ही जो अपने आप की आत्मा को ही ब्रह्म में यज्ञ करते हैं, यानी दोनों को एकाकार कर देते हैं, तो ऐसे यज्ञ को ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुयते, यज्ञ को यज्ञ में हवन करना कहलाता है, है ना। जब हम अपने आत्म तत्व का यानी स्वयं का परम ब्रह्म में यज्ञ कर देते हैं, यानी जहां पर मेरे अलावा या परम सत्ता के अलावा कुछ बचता नहीं है, इसको यज्ञ में यज्ञ का हवन कहना कहलाता है। ये यज्ञ का यज्ञ में हवन है, अग्नि का अग्नि में हवन है महाराज। तो ऐसे साधक जो है परम ज्ञानी या आत्मज्ञानी कहलाते हैं। उसके बाद भगवान ने जो आपको एक गुण दैवी संपदा का बताया था, दमः, दम इंद्रियों का निग्रह, समः मन का समन, तो श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्ने संयमाग्नि सुजुहति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। तो दोनों तरीके से भगवान ने इसको समझाया है, चाहे तो संपूर्ण इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर दो, है ना, जो भी हमारी श्रोत्रादिक इंद्रियां हैं इनके ऊपर आप नियंत्रण करेंगे तो महाराज आपका जो है ये यज्ञमय जीवन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, है ना, बड़ा कठिन काम है। एक बार जो है मैं अपना भरूच में सत्संग कर रहा था, तो सत्संग हाल था, सत्संग हाल के बगल में किचन था, तो किचन में जो है वो प्रसाद बनाते थे, तो एक दिन जो है वो बेसन के लड्डू बनाने थे उनको, तो उन्होंने देसी घी में बेसन को भूनना प्रारंभ किया, इधर हमारा सत्संग चल रहा है। अब देखिए आदमी की का शरीर तो बैठा है सत्संग भवन में, लेकिन नासिका उसको उठा के कहां ले गई, हाँ, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ लगभग जो है 90% लोग किधर की तरफ भागे, हाँ, क्या बन रहा है आज ये इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं, बड़ों बड़ों को हिला देती हैं। नर नारायण की तपस्या किसी चीज से भंग नहीं हुई महाराज, सब जोर लगा के मर गए, इंद्र के जितने भी देवता कामदेव जो भी थे सब पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब अंत में संगीत की धुन बजी महाराज, तो संगीत ने नारायण की समाधि को हिलाया और भगवान ने अपने नेत्र खोले। तो ये श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य, कहते हैं भगवान श्रोत्रादिक जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर संयम करना ये यज्ञ का एक क्या है, रूप है, ये भी एक यज्ञ है। यदि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण करते हैं। दूसरा इसी का जो परावर्तन रूप है, शब्दादीन विषयान अन्य, कहते हैं शब्दादिक जो हैं, जो हमारे विषय हैं, उन विषयों को जब हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं तो ये महाराज विषयों के ना ग्रहण करने रूप यज्ञ रूप जीवन कहलाता है। यानी शब्दादीन विषयान अन्य, यानी या तो चाहे आप इंद्रियों का नियंत्रण कर लो या इन विषयों को ही अपने पास ना आने दो, तो दोनों में से अगर कुछ भी आप करेंगे, सीधा कहने का मतलब है दम, कहने का मतलब दमन, इंद्रियों का दमन किसी भी रूप में या मन का समन किसी रूप में अगर आप करते हैं तो ये यज्ञमय जीवन कहलाता है। और बहुत से लोगों को इस प्रकार की तपस्या में रत देखा जाता है महाराज, है ना, तो बहुत सारे लोग हैं तरह तरह की जो है उनको भगवान ने जिसको जैसी शक्ति दी है। हमारे एक प्रेमी हैं, उनके यहां एक महात्मा आते थे महाराज, तो वो 24 घंटे में केवल एक गिलास दूध पीते थे। कितना, पूरे 24 घंटे में कितना भोजन था उनका, एक गिलास दूध, सोचिए कल्पना कीजिए आप। तो ऐसा भी जीवन, और चलते थे फिरते थे बोलते थे सारे कार्य होते थे, लेकिन केवल कितना आहार, एक गिलास दूध, उसके अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे वो, चाहे उनके सामने अमृत रख दो चाहे उनके सामने कुछ भी रख दो। तो इस प्रकार का जीवन देखा जाता है महाराज महात्माओं का। तो सर्वाणिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। उसके बाद जो है संपूर्ण क्रियाओं को कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि। बहुत से ऐसे योगी हैं जो महाराज इन इंद्रियों से कर्म करते हुए देखे जाते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं भयंकर कर्म करते हुए देखे जाते हैं, तो क्या वो कर्मों में फंस गए, तो भगवान कहते हैं नहीं, उन्होंने अपनी इन संपूर्ण क्रियाओं को भगवान रूपी यज्ञ कुंड में यज्ञ कर दिया, या ज्ञान रूपी यज्ञ कुंड में यज्ञ कर दिया कि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु को समर्पित है, इसमें मैं कुछ भी करने वाला नहीं, मेरा शरीर निमित्त मात्र है। इस प्रकार के बहुत सारे वो शुभ कार्यों को करते हुए देखे जाते हैं, है ना, वो कर्म रूप क्रिया से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि उन क्रियाओं के द्वारा जो बंधन में बांधने वाली क्रियाएं हैं, मनुष्य को महाराज भयंकर झंझावात में ले जाकर डाल देती हैं, उन्हीं झंझावात रूपी क्रियाओं से महापुरुषों को मुक्त होते हुए देखा जाता है। और स्वयं आपके भगवान श्री राम धनुष बाण लेके जंगल में विश्वामित्र की रक्षा कर रहे हैं, हैं? रावण को मारने के लिए वन में जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का क्या हाल करें, रथ हांक रहे हैं। देखो
ये है,
इंद्रियों से कर्म करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन महाराज कर्महीन हैं, कर्म का उनके अंदर जरा सा भी लिपायमान अवस्था की बिल्कुल भी स्थिति दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ज्ञान दीप्त, ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण उनकी बुद्धि इन कर्मों की क्रियाओं को ग्रहण नहीं करती। कहते आत्मसंयम योगाग्नि, जो आत्मसंयम रूपी योगाग्नि है, बहुत से लोग, बहुत से योगी जन अपनी प्राणों की समस्त क्रियाओं को, ये 10 प्राण ही हैं, कोई अलग प्राण नहीं होते बल्कि ये समस्त 10 इंद्रियां ही हमारे 10 प्राण हैं, तो आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। यानी किसी भी प्रकार से आपको अपने आप को इन कर्मों के फलों से बचाना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। देखो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कहते हैं कौन कौन सा यज्ञ है, कहते हैं बहुत सारे योगी जन द्रव्य यज्ञ करते हैं, है ना, जिसको आप लोग सामग्रियों के द्वारा किया गया हवन कहते हैं, दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करके, हवन सामग्री इकट्ठा करके, घृत आदि इकट्ठा करके ये द्रव्य यज्ञ किया जाता है जिसमें दक्षिणा आदि की आवश्यकता होती है। उसके बाद बहुत से तपस्वी देखे जाते हैं, तप यज्ञ इसको कहा जाता है ना, भगवान के नाम का जप करके या कहीं एकांत में बैठकर भगवान का यजन करना तपस्या कहलाती है। इसी प्रकार से योग यज्ञ है, जो रात दिन भगवान के संग जुड़े रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं होना चाहते, उसको योग यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत से लोग संसिद्ध व्रता, बहुत से लोग अहिंसा का व्रत ले लेते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, ऐसा व्रत ले लेने वाले बहुत से योगी देखे जाते हैं। तो वो महाराज अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते अपने व्रत के लिए, है ना, जो व्रत ले लिया सो ले लिया, जो संकल्प ले लिया सो ले लिया, ये यज्ञमय जीवन कहलाता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, उसके बाद है फिर स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, है ना, शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से अपनी बुद्धि को परमात्मा में बनाना क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है, है ना, क्योंकि असली काम तो हमारा क्या है, अपने आप को परमात्मा मैं बनाना है। जो हम परमात्मा से दूर होकर इस संसार के छोटे से प्रारूप को ही अपना सारा जीवन जो समझ बैठे हैं, इसी की जो गलती है हमारी है, इसको सुधारना ही स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र की वाणी के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा अपने भटके भूले मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा बना देना, ये स्वाध्याय का यज्ञ कहलाता, स्वाध्याय यज्ञ है ये। यानी निज स्वरूप की स्वाध्याय किस लिए करते हो, जिससे हमको निज स्वरूप की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। और तुम्हारा निज स्वरूप क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम्हारे मरने से तुम मरने वाले, शरीर के मरने से तुम मरने वाले नहीं हो, तुम नित्य हो, हमेशा हो, जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, ऐसा ये स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ जो हम लोग करते हैं ये इसका प्राप्तव्य है, है ना, जिसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उसके बाद बहुत से योगी कैसे देखे जाते हैं, भगवान कहते हैं अपाने जोई हति प्राणम प्राणे प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे सुजयति सर्वपेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषः। भगवान कहते हैं बहुत से लोग हैं जो प्राणायाम को ही अपना आधार बनाकर उसमें ही प्राण वायु को अपान वायु में, प्राणों को प्राणों में या अपान को प्राण में, इस प्रकार से प्राणायाम के जो है पारायण होकर इसी यज्ञ को महाराज करते हैं, जिससे उनकी मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाती है। उसके बाद है अपरे नियत आहार, अभी आपको उदाहरण दिया, नियत आहार का सहारा लेकर एक गिलास दुग्ध में ही अपने जीवन को चलाने वाले, ये है ना, निरीक्षित निराकांक्षित अवस्थाएं हैं महाराज, है ना, किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को चलाता है। तो अपरे नियता हरा प्राणान प्राणे सुजयति, प्राणों का प्राणों में महाराज जो है हवन करते हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वप्रेते यज्ञ विदो, ये सारे के सारे जो अर्जुन मैंने तुमको गिनाए हैं ये सब यज्ञ विद हैं, इन्होंने अपने जीवन में यज्ञ को समझ लिया है, यानी इन्होंने कला सीख ली है। क्या कला सीख ली है? संपूर्ण कर्मों को किस प्रकार से भस्मीभूत किया जाता है। जब तक आपके कर्म और कर्म फल भस्मीभूत नहीं होंगे परमेश्वर के दर्शन होने वाले नहीं है, ये बिल्कुल समझ लो। इसीलिए भगवान ने कहा यज्ञ छपित कल्मषः, ये इतने सारे योगी इन यज्ञों के द्वारा क्या करते हैं? तो भगवान कहते हैं ये अपने पापों का निवारण करते हैं। बात समझ में आई नहीं? जब तक आपका शरीर है और इस शरीर से आपका संबंध स्थापित है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है, ये केवल और केवल हमारे पापों का परिणाम है, ये पापों का बंधन है जो हम अपने आप को इस शरीर के संग बांधकर बैठे हुए हैं। वास्तविकता में इस शरीर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तो महाराज आपको जलाया नहीं जाता, आपको राख नहीं किया जाता, फिर तो आपको संभाल कर क्या किया जाता, फिर संभाल के रखा जाता कि नहीं जाता। तो हमारा वास्तविकता में रिश्ता नहीं है, लेकिन जो हम इस शरीर के संग जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं इस स्वाध्याय ब्रह्म ज्ञान में, वो ये करते हैं हम अपनी मुक्ति नहीं, हम शरीर की मुक्ति करवाते रहते हैं। मैं मुक्त होऊंगा ऐसा विचार आता है ना आपके अंदर, तो मैं जब आप कहते हैं तो मैं के संग क्या आ जाता सामने, शरीर है। तो मैं मुक्त होऊंगा तो शरीर मुक्त होगा या तुम मुक्त होगे? तो शरीर के संग हमारा इतना भयंकर लगाव हो चुका है कि पढ़ाना लिखाना पूजा पाठ जो कुछ भी हम करते हैं सबका फल हम किसको दे देते हैं? शरीर में ही देखना चाहते हैं महाराज, हमारे शरीर को कोई कष्ट ना हो, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आए, हमारे शरीर में ये ना हो, हमारे को ये ना हो, ये शरीर की ही रात दिन चिंता हम करते हैं। इसलिए हमको अपने वास्तविक मूल रूप परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। जिस दिन ये पाप समाप्त तो हो जाएगा, इस पाप ने तो बांध रखा है ये सारा खेल। कहते हैं यज्ञ छपित कल्मषः, यज्ञों का कोई दूसरा कार्य नहीं है। जिस प्रकार से वो जलती हुई अग्नि पंचमेवा घृत आदि संपूर्ण जड़ी बूटियों को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि आपके संपूर्ण कर्मों के फलों को भस्मीभूत कर देगी। और जब वो भस्मीभूत होगा तब आप पाप मुक्त हो जाएंगे, और पाप मुक्त होते ही परमेश्वर के दर्शन के लिए तो कितना समय चाहिए। अरे अष्टावक्र जी ने जनक जी से जो है आत्म साक्षात्कार का कितना समय दिया, कितना समय, कि घोड़े की एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता है इतनी देर में क्या हो जाता है आत्म साक्षात्कार, यानी अपने स्वरूप का दर्शन, इतना समय चाहिए हैं। और केन श्रुति तो महाराज इससे भी कम मानती है, केन श्रुति तो कहती है बिजली के चमकने वैद्युतदा, बिजली के समान चमकने के समान इतनी देर में यक्ष ने महाराज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। क्रेनसुति आपने श्रवण किया होगा उदाहरण यक्ष का, है ना। तो बिजली की चमकने और एक निमेश मात्र, पलक जितनी देर में आपकी नीचे गिरती है उन्मेष और निमेश मात्र में ब्रह्म ज्ञान होता है, इतनी देर चाहिए। लेकिन उसके लिए छपित कल्मषः है, क्योंकि भगवान ने फिर देखो इसी चीज को समझाइए दोबारा, फिर इसी पे जोर दिया जो हम नहीं करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से बचा हुआ है ना, जिस प्रकार से जब हम कोई यज्ञ करते हैं उसमें से जो कुछ भी शेष बचता है वो प्रसाद रूप माना जाता है, तो उसी प्रकार से जब इसका फल उसको प्राप्त होता है उसका जब वो आनंद लेता है, तो वास्तविकता में तो वहां बचने वाला कुछ है ही नहीं परमेश्वर के अलावा। तो परमेश्वर ही जब बचता है तो यज्ञ शिष्टामृत, अमृत बचाना, तो यज्ञशिष्ट यज्ञावशिष्ट यानी यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है यानी परमेश्वर है उसको प्राप्त हो, यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो सनातन ब्रह्म है उसको वो प्राप्त हो जाता है, है? निष्पाप पुरुष नायम लोकोस्त यज्ञस्य, जो अयज्ञ पुरुष है जिसके जीवन का जीवन स्वरूप यज्ञ रूप नहीं है वो तो ना इस लोक में सुखी है और परलोक में तो सुख की कोई कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, जब आप ये वेदों के द्वारा वर्णित बहुत सारे यज्ञों को समझेंगे, बहुत सारे विस्तार से जो कहे गए ये सब कर्म से ही निकले हुए हैं, लेकिन जब आप इनको तत्व से जान जाएंगे, विद्य एवं तत्व से जब इनको आप जान जाएंगे तब आपको जो है पूर्ण मुक्ति का विमोक्ष से यानी पूर्ण मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने अंत में कहा श्रेयान द्रव्यमयाद अज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, है ना। सबसे श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ, लेकिन द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, है ना। द्रव्य यज्ञ से आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और ज्ञान यज्ञ से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो श्रेयान द्रव्यमयाद अज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अगर ज्ञान को समुद्र मान लिया जाए और कर्म को नदियां मान लिया जाए तो जिस प्रकार से संपूर्ण नदियां अंत में कहां मिलती हैं जाकर सागर में मिलती हैं, इसी प्रकार से आपके संपूर्ण कर्म जो है अंत में परमात्मा रूपी ज्ञान में ही जाकर सागर में ही जाकर क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान और परमेश्वर में कोई भिन्नता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ही तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, है ना। तो परमेश्वर ही ज्ञान स्वरूप है, परमेश्वर ही अनंत स्वरूप है। तो उस अनंत सागर में जाकर आपके संपूर्ण कर्म यज्ञों के द्वारा मिल जाएंगे यानी समुद्रवत हो जाओगे, सागरवत हो जाओगे, परमेश्वरमय हो जाओगे। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य भगवान का ये है दैवी संपदा में कि किसी ना किसी यज्ञ को अपने जीवन में क्या कर लो स्वीकार कर लो और उस यज्ञ को जो आपको सहर्ष अच्छा लगे उसको स्वीकार करके उस यज्ञ के ऊपर उस आहुति को निरंतर डालते रहो जिससे हम पाप से मुक्त हो जाएंगे और पाप मुक्त होना ही ज्ञान है। उसके लिए लंबे चौड़े काल की आवश्यकता नहीं। तो कल जो है आज हमारा क्या क्या हो गया है ना, अभयम सप्त संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जम। कल हम लोग जो है यज्ञ के पश्चात ये यज्ञ दैवी संपदा का गुण है महाराज, है ना। तो आपको दर्शाया गया तृतीय अध्याय के माध्यम से चतुर्थ अध्याय के माध्यम से कि यज्ञ को कैसे समझा जाए, यज्ञ में जीवन कैसे बनाया जाए। कल हम लोग स्वाध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।